मुश्किल में हूँ सरकार, मैं मुश्किल में हूँ।
सबसे पहले किसने अपने आप को दूसरे से बेहतर कहा कि मैं इससे बेहतर, और वो बर्बाद हुआ? नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसको इबलीस कहा करते हैं, उसको शैतान के नाम से भी याद करते हैं। जब उसको हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करो, तो उसने जो कहा सूरतुल आराफ में, उसका कौल मौजूद है कुरान करीम में, सूरतुल आराफ में कहा वलाना खैरु मिनहु खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन। ये कंजुल ईमान का तर्जमा बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इस आदम से मैं बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया, मैं इससे बेहतर हूँ और मैं तुझसे बेहतर हूँ। मेरे वालिद साहब तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और तेरे वालिद साहब तो मजदूर हैं, मैं तुमसे इसलिए बेहतर हूँ कि मेरा बाप तो वजीर है और तेरा बाप चपरासी है। खलक तनी मिन नारी हूँ खलक तो हूँ मिन तीन, बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर किसने कहा? शैतान। अब जो भी अपने आप को किसी से बेहतर बताए, वो अपने गिरे में ये बांध ले कि वो शैतान के कौल की नकल कर रहा, कि सबसे पहला कौल ये शैतान का है, इस मरदूद ने कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, और वजह ये बताई कि मैं आग से तूने मुझे याद ना बनाया, इसको तो मिट्टी से बनाया, इसलिए मैं बेहतर हूँ। और ये बेईमान ये भूल गया ये पैदा करने वाला रब है, उसी ने तो मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, वो जो चाहता है करता है, और इसी रब का हुक्म है कि इसको सजदा कर, तो अगर वो सजदा कर लेता तो वो रुसवाई से बच जाता। लेकिन बहरहाल वो तकब्बुर की वजह से शैतान, जो ये आमतौर पर लोग जानते भी हैं कि शैतान तकब्बुर की वजह से बर्बाद हुआ, तो सबसे पहले शैतान ने तकब्बुर किया और उसने आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर की, हकारत से उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। तो जब भी आपके जहन में ये ख्याल आए कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये तो मेरा शागिर्द है यार, मैं इससे बेहतर हूँ, इसके तो मखारिज भी दुरुस्त नहीं है, मैं तो कारी हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, यार इसकी भी कोई आवाज है, मैं कितनी अच्छी नात शरीफ पढ़ता हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, ये तो बयान में अटकता है और मैं कैसा मतलब तम तराक के साथ बयान करता हूँ और लोग महवियत के साथ मुझे सुनते हैं, यार इसको तो दुआ मांगना भी नहीं आती, मैं किसी दुआ मांगता हूँ लोग फूट फूट के रोते। जब इस तरह का दूसरे पर अपनी बेहतरी का वसवसा आए कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो फौरन शैतान को याद कीजिए और कमाने दाहौल पर तीरे इस्तियादा रखकर इस दौर से चलाइए कि शैतान मुंह फेर कर भाग खड़ा। तीरे इस्तियादा से मतलब यह है कि तहव्वुज़ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कमाने लाहौल पर रखकर यह मतलब बहरहाल वो लाहौल पढ़िए, अऊज़ु पढ़िए, शैतान को दफा कीजिए कि मैं इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, मैं तो किसी से बेहतर नहीं। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बुजुर्ग का बड़ा अजीबोगरीब वाकया नकल किया। फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आता था, तो वो शख्स जो था उस बुजुर्ग को अच्छा नहीं लगता था, यानी वो बहुत उनसे घिन आती थी, दिल नहीं जमता था उसका और दिल लगता नहीं था, उसकी वजह कोई नहीं थी, तबाही तौर पर वो मतलब ऐसे हकीर नजर आता था उनको और दिल नहीं लगता था उनसे। तो एक बार उस वो बुजुर्ग जो थे वो एक अलग कमरे में ले गए और उनसे कहने लगे कि भाई तुम अपना पाँव जो है वो मेरे मुंह पे रख दो। वो बेचारा अकीदत से आता था, उसने कहा हजरत आप क्या फरमा रहे हैं, मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ कि अपना गंदा पाँव आपके मुबारक मुंह पे रख दूं। अब वो बुजुर्ग जो थे वो भी अड़ गए, तो ये तो तुम्हें करना ही था कि उसको मजबूर कर दिया और उसका पांव जबरदस्ती लेकर उन्होंने अपने मुंह पर रख ही लिया। तो इस तरह वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे दिल की जो कैफियत थी इस शख्स के बारे में, जो नफरत होती थी मुझे, वो खत्म हो गई। तो पता ये चला कि इसमें भी कुछ मतलब हिकमत है, मैं बहुत कि जब कोई तकब्बुर वाली बात पैदा हो तो कुछ उसका उलट कर गुजरे आदमी। मसलन हजरत सैयदना इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह सफर हज पर गए थे और लोग इस्तकबाल के लिए निकल आए, जब वहां पहुंचे तो दिल में जरा भाई मेरी बड़ी वैल्यू है, लोग मेरे उस पर आ गए, तो लोग चूंकि देख कर तो नहीं जानते थे, उस दौर में फोटो का रवाज तो था, चलो अखबारों में फोटो छपता है और लोग वो पहचान लेते, जानते तो थे नहीं लोग, तो ये खुद ही उन लोगों में मिल गए जाकर और पूछा किस लिए आए हो। बोला हम तो जमाने के वली हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह हज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, हम उनके इस्तकबाल के लिए जमा हुए। अब ये थे तो सादा आदमी, और तो पता है कि ये एक नफियात होती है कि बंदा जो है वो शोहरत या जिसका नाम मोटा हो वो ये सोचता है कि उसका बदन भी मोटा होगा। तो बहरहाल फरमे खामा खा फरमे माकूल, जो फरमा होता है वो माकूल नजर आता है खामा खा, तो वो यही समझे होंगे कोई मतलब लहीम शहीम शख्स होंगे और बड़ा मतलब लिबास यूं होगा तो साफा यूं होगा तो इस तरह मतलब। तो इन्होंने जब नाम सुना इब्राहिम बिन आदम, तो इन्होंने फरमाया कि इब्राहिम बिन आदम के लिए तुम आयो? अरे भाइयों वो तो सही आदमी तो नहीं है, बड़े गलत आदमी है ये वो। इन्होंने इब्राहिम बिन आदम की बुराई शुरू कर दी और पब्लिक इन्हीं की मोहब्बत में इन पर टूट पड़ी और ठोक पीट कर मतलब खूब ढोल चपत रसीद किए। और ये अपने नफ्स को मतलब यानी के कहते हुए चले गए कि देखा किसा पिटवाया शोहरत की ख्वाहिश पर। तो ये बड़ा मसला है कि लोग अगर इस्तकबाल के लिए जमा, आज तो बड़ी ख्वाहिश होती है यानी कोई मदीने जाए या हज पर जाए तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे छोड़ने के लिए आए और ज्यादा से ज्यादा मुझे लेने के लिए भी आए। मेरे घर पे नातखानी है तो मेरे घर पे ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए, ताकि ये बोलेगा नहीं जबान से तो इनकी सारी ही करेगा जबान, दिल के अंदर गौर करे, दिल यही चाहेगा कि ताकि लोगों पर मेरा इम्प्रेशन पड़े, खानदान वालों पर मेरा इम्प्रेशन पड़े, या शादी का मौका है तो ससुराल वालों पर मेरा इम्प्रेशन पड़ जाएगा कि भाई वो ये बड़ा इसकी तो वाकफियत है, बड़े ताल्लुकात है, इसकी नातखानी में तो बहुत सारे लोग आए थे, इसके वलीमे में तो इतनी पब्लिक आई थी, इसकी बारात में तो इतनी पब्लिक आई थी। वो अपने दिल पर गौर करे और दिल में कसम खाए कि क्या ऐसी कैफियत है, यदि मुझे ना बता आपको ना बता। और मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मशहूर आदमियों को लोग इसीलिए तंग करते हैं अपनी शादियों के लिए। यह है कि लोग मोहब्बत करते हैं या यूं कहिए नाम है बदनाम ही सही, तो शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, नातखाने के लिए बहुत तंग करते हैं, वलीमे में शिरकत के लिए बहुत तंग करते हैं। 10 मिनट के लिए आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ, आखिर और भी तो मौका होता है कि मतलब अगर दुआ करवानी तो यहाँ बैठे बैठे भी हो सकती है, घर बैठे बैठे भी हो सकती है। तुम्हारे इधर आकर दुआ करूं, तुम्हारे ही मतलब महफिल में मैं अटेंडेंस करूं, ये क्यों जरूरी है? तुम्हारे घर पर आऊं ही आऊं ये क्यों जरूरी है? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि ताकि पूरे खानदान में अपनी नाक ऊंची रहे कि भाई फुला भी मेरे यहाँ शादी में आया था या फुला ने मेरा निकाह पढ़ाया, इसीलिए जिद करके किसी मशहूर आदमी को लाए कि मेरा फुला ने निकाह पढ़ाया। मामूली आदमी नहीं, जबान से नहीं, वो दिल में ये कैफियत के यानी के मैं मामूली आदमी नहीं, मेरा तो फुला शख्स ने निकाह पढ़ाया है या फुला मेरी नातखानी कहीं नहीं जाता लेकिन मेरे इधर आया, किसी के घर नहीं जाता, माँ बदौलत के घर आया था, फिर नंबर बनाता। तो हर एक अपने दिल पर गौर करे, वजह क्या कि एक मशहूर शख्स को मजबूर करना कि वो आए 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 आए, ये अकीदत है या कोई शैतानी हरकत है जो मजबूर कर रही है इसको लाओ ताकि 4 आदमियों में अपना नाम ऊंचा हो जाए। तो बहरहाल तकब्बुर के रास्ते बहुत सारे हैं, जिस रास्ते से वो दिल में घुस ही जाता है और बंदा बहुत मुश्किल होता है कि उसका रास्ता बंद कर सके, और ना ये मेरी सारी बातें उसको याद रहेंगी। तो बहरहाल ये कि ये बड़ा अजीब और गरीब मामला होता है शैतान का, कि शैतान जो है वो हमारे गुनाहों का इलाज हमें करने ही नहीं देता, हमें सुनने ही नहीं देता और हमें सोचने भी नहीं देता। बहरहाल मेरे इस्लामी भाइयों, तकब्बुर के बहुत सारे असबाब होते हैं। मसलन इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने इसकी बहुत सारी मिसालें दी। तकब्बुर एक ये भी होता है कि बंदा अकेला घर से नहीं निकलेगा, अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ 2-4 बंदे होने चाहिए। और इसमें भी जो मशहूर आदमी जो है ना, या अहले इल्म हो बिलफर या पीर हो या लीडर हो, वो फंस जाता है। मैं अकेला निकलूंगा तो लोग क्या यार आप, और अकेले अकेला जाऊंगा मेरा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, 2-4 मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले पीछे होने चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने ये लिखा है कि जब तक कोई साथी ना हो कहीं जाना ना चाहे, मैं उसको जी ना चाहे कि मैं अकेला चला जाऊं, अगर ऐसी कैफियत है तो ये भी तकब्बुर है। अब अकेला ना निकलने की कोई और वजह हो, दिल में ये कैफियत नहीं, अकेला जाने में मतलब कोई आर महसूस करता हो, ऐसा नहीं, और कोई वजह है कि मसलन अकेला जाने में दुश्मन का खौफ है या लोग ही उसको अकेला नहीं छोड़ देंगे, ऐसा भी है कोई ना। तो इन्नमल अमालु बिन्नियत, अगर नियत ऐसी है कि अकेला चला जाता तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर किसी सही मजबूरी की बिना पर अगर अकेला नहीं जा पाता तो उसमें तकब्बुर उसको नहीं कहेंगे। बहरहाल हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि वो अपने साथ किसी को चलने नहीं देते। हजरत सैयदना अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ अजीज, जितना ज्यादा लोग तेरे साथ चलेंगे उतना ही तू खुदा की बारगाह से दूर होगा। इतनी डराने वाली बात। अब ये कि बंदा दिल पर अपने गौर करे कि ज्यादा लोग साथ चलते हैं तो फूलता है या नहीं। अगर फूल जाता है तो फिर इसको खुद ही सेटिंग करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अकेला जाने की आदत बनानी चाहिए। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तो नियत पर दारोमदार। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि लोगों के बीच में चलते थे, दरमियान में, और कभी कभी दूसरे लोगों को आगे चलने के लिए इरशाद फरमाते थे, लोगों से फरमाते आगे चलो आगे। अब ये के ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और सरकार की शान। तकब्बुर की अलामत में से एक ये भी है, इमाम गजाली फरमाते हैं कि लोग तुम्हारे सामने दस्तबस्ता हाथ बांधे खड़े रहे। अब ये भी जो मतलब यानी कि शोहरत याफ्ता लोग होते हैं, क्या मतलब पीर साहिबान हो, उलमा हो, उनके लिए इसमें आजमाइश होती है कि लोग ऐसा करते हैं। अब इसमें भी बस वही बात है, नियत। अगर दिल ये चाहता है कि लोग खड़े हुआ करें ताजीमन तो फंसा, और अगर दिल मुतमईन है कि खड़े होते तो भी क्या, ना खड़े होते तो भी क्या, और खड़े हो कि कोई ख्वाहिश नहीं है तो वो मुजरिम नहीं। अब लोग खड़े हो जाए खुद ही माने ही ना, अगला करे क्या, वो उसकी मजबूरी होती है, बहुत मजबूरी। तो अपने तौर पर आप बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि दिल में ये बात ना पैदा हो कि लोग मेरी ताजीम क्या करें, मेरे हाथ चूमा करें, मेरे पैर चूमा करें, मेरे लिए खड़े हुआ करें, मैं जैसे जाऊं मेरे लिए जगह कुशादा कर दें। अगर ये तकब्बुर की वजह से अगर, तो फिर आप खुद इसका अंजाम सुन चुके हैं।
आयना फरमानिया बेबाकिया नादानिया ना हो करम मुश्किल में हूँ सरकार मैं मुश्किल।